नमस्कार श्रोताओं, मैं सुरभि यादव और आप सुन रहे हैं छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी। आज राजीव की डायरी के कार्यक्रम के तहत हमारे साथ आज जुड़ी है अधिवक्ता सुश्री आराधना भार्गव जी, जिनसे हम आज राजीव की डायरी पर चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार मैम, आपका मोबाइल वाणी पर स्वागत है।
नमस्कार
जी मैम। मैम, जैसा कि राजीव की डायरी पर बात कही गई है कि आज स्कूल हमें आए दिन ये खबर देखने को मिलती है कि किसी स्कूल में, शायद सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहां के स्कूल के प्राचार्य हो चाहे मेल शिक्षक हो, उनके द्वारा लड़कियों पर बच्चों के साथ गलत व्यवहार करते हमें खबरें दिखाई देती है। ऐसे में जिसे हम विद्या का मंदिर कहते हैं और वहां पे अगर इस तरह की चीजें होगी तो फिर ये समाज के लिए कितना प्रभावकारी है। इसमें लड़कियों की सुरक्षा की जब बात आती तो इस पर आपके क्या विचार है?
इस पे दो बातों पर हमें देखना पड़ेगा
जी।
एक तो धर्म तो महिलाओं को दोयम दर्जे का काम मानता ही है और यह संदेश भी देते हैं कि महिलाओं के साथ महिलाएं तो उपभोग करने की वस्तु हैं। दूसरा, अगर हम कानूनी पहलू पर देखें कि अपराधियों के मन से भय, कानून का डर निकल गया। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनके ऊपर उनके ऑफिस में काम करने वाली अधीनस्थ महिला ने ये आरोप लगाया कि चीफ जस्टिस ने उनके साथ छेड़छाड़ की, तो उस महिला की ही नौकरी, उस महिला को नौकरी से निकाल दिया गया और चीफ जस्टिस जो थे रिटायर होने के बाद उनको राज्यसभा में पहुंचा दिया गया। तो अपराधियों को ये लगा कि कुछ भी कर लो लड़कियों के साथ कुछ होने वाला नहीं है, जब चीफ जस्टिस के साथ कुछ नहीं हो सकता तो हम लोग तो फिर छोटे से लोग हैं, मतलब कानून वाला, कानून से हम बच जाएंगे, ये संदेश जा रहा है। ये बात बहुत दुखद है कि गुरु और शिष्य का जो रिश्ता था वो बहुत पवित्र रिश्ता है और हम आए दिन इस तरह की घटनाएं देख रहे हैं और उन पर कोई कार्यवाही होते नहीं देख रहे हैं। अगर किसी शिक्षक को सजा मिल जाए, आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान सरकार ने कानून में कर तो दिया, पर जमीन पर हम ये देखते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं होती। अभी भी हमने एक नियुक्ति के बारे में देखा था कि वो लड़कियों को जो अधिकारी इंटरव्यू ले रहा था उसने कहा कि एक रात तुम्हें मेरे साथ बितानी पड़ेगी और उस पर कोई इस तरीके की कार्यवाही सरकार के द्वारा करते हुए दिखाई नहीं देती ताकि लोगों के मन में किसी प्रकार का भय हो। एक चीज और समाज में उभर कर देखने को मिल रही है कि जो नाबालिग लड़कियां हैं उनके साथ सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़ की घटनाएं बहुत ज्यादा तेजी से हो रही हैं और पुलिस ऐसे मामलों में समझौता कराने की कोशिश में रहती है। जो पुलिस की भूमिका हम देखते हैं, जहां पुलिस को FIR दर्ज करनी चाहिए वहां पर पुलिस अपराधी के साथ खड़ी रहती है।
जी मैम, जैसे कि मैम आपने भी कानून की बात कही, अपराधियों का डर खत्म हो रहा है और जब हमारे कानून की रक्षा करने वाले चीफ जस्टिस, आपने बात कही अभी उनके बारे में, तो मैं ये सीधा कहूँ कि हमारा देश का जो कानून व्यवस्था है बहुत ही घटिया है, जो कानून बनाए गए बहुत ही घटिया है, क्योंकि अगर हम आज भी जो चीजें होती है लड़कियों के साथ इनमें जब प्रकरण की बात आती तो कईयों कईयों साल हमें न्याय नहीं मिलता। हमने निर्भया जी के केस में देखा है कि इतने लंबे केस चलते हैं, तो ऐसे में सीधा कहे कि ये कानून घटिया है तो आपके क्या विचार है इस पे? क्या इसमें बदलाव आना चाहिए और आना भी चाहिए तो किस प्रकार का बदलाव आना चाहिए ताकि जो घटनाएं होती उन पे तुरंत एक्शन हुआ, 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, खासतौर पे महिलाओं की बातों पर। जी,
तो इसमें तो पुलिस की जवाबदेही, सबसे बड़ी बात यह है पुलिस की जवाबदेही राज्य के प्रति है, कानून और व्यक्ति के प्रति नहीं है, और राज्य को प्रोटेक्शन देने का काम पुलिस करती है। तो यहाँ पर FIR दर्ज करने का काम ही पुलिस वाले नहीं करते, क्योंकि इस प्रकार का संदेश जाएगा कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं और इनकी संख्या बढ़ते चली जा रही है, तो इन अपराधों को दबाने के लिए पुलिस वाले एफआईआर ही दर्ज नहीं करते। अभी छिंदवाड़ा की ही मैं बात बताऊं, एक नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना घटी और पुलिस वाले लगातार उस महिला के लड़की की मां पर दबाव बना रहे हैं कि आप एफआईआर दर्ज मत करिए। तो इस तरीके की जब घटनाएं होंगी तो अपराधी के हौसले बुलंद होते हैं। और आज हमने देखा कि जिसने नाबालिग के साथ बलात्कार किया था वह व्यक्ति जमानत पर रिहा हो गया, क्योंकि पुलिस वालों ने प्रकरण को इतना ज्यादा कमजोर बनाया। एक तो नाबालिग है, दरी सहमी है, उसकी मदद करने का काम पुलिस वालों को करना चाहिए, उसकी हिम्मत बढ़ाने का काम करना चाहिए। तो पुलिस अपराधी के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है और ये बहुत ज्यादा दुखद है। चुनाव में इस तरीके के मुद्दे नहीं आते। चुनाव में हम देखेंगे कि अभी लोग राम 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 अयोध्या अयोध्या पर लगे हुए हैं, पर वहां पर ये नहीं देख रहे हैं कि लड़कियों के साथ किस तरीके की छेड़छाड़ हो रही है। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, और जब बेटियां सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित होगा, लड़कियों के आगे बढ़ने के अवसर कैसे मिलेंगे और कैसे माँ बाप अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजने का काम करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा शर्मनाक है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये बात सोचनी चाहिए। और मोबाइल वाणी को मैं धन्यवाद दूंगी ताकि ऐसे मुद्दों को ये उछालने का काम कर रहे हैं जिस पर सरकार के कान खड़े होने चाहिए और ऐसे अधिकारी जो अपराधियों के साथ खड़े हैं उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। और मैं मोबाइल वाणी के माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि आप देश की पुलिस को स्वतंत्र करिए। देश की पुलिस ये 1861 का, अभी तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत कहा कि हमने तो ऐसे कानून बना दिए हैं जो देश के कानून हैं वो होंगे और अंग्रेजों के जमाने के कानून को हम बदल दे रहे हैं, पर 1861 के पुलिस एक्ट को क्यों नहीं बदला। 1861 के पुलिस के बल पर ही सरकार चल रही है। ये कल्याणकारी सरकार नहीं है, ये पुलिस स्टेट बन गया है हमारा राज्य, और पुलिस के बल पर ही हमारी सरकार चल रही है। और इसीलिए वो पुलिस एक्ट में कोई संशोधन नहीं करना चाहते। पुलिस की जवाबदेही जब तक कानून और समाज के प्रति नहीं होगी तब तक हमारी बेटियां असुरक्षित रहेंगी और हमारी बेटियों के साथ इसी तरह से निर्लज्जता से उनका शोषण होते रहेगा। और ये जो हम देख रहे हैं कि मनुवाद की तरफ बढ़ता हुआ यह भारत, जहाँ पर सीता को तो प्रताड़ित किया गया, धरती फट गई और सीता उसमें समा गई, ऐसी ही यह भारत की नारियों की स्थिति केंद्र में बैठी हुई सरकार करना चाहती है। इसके खिलाफ हमें खुद को संघर्ष करना पड़ेगा, इसके खिलाफ हमारी बेटियों को ही सामने आना पड़ेगा और हम फिर अपनी बेटियों की तभी सुरक्षा कर पाएंगे जब समाज जागृत होगा। पहले हम ये देखते थे कि
जैसे कि आपने अभी कानून की बात कही, वो एक्ट की बात कही गई है, और मैं इस पे यही आपसे अंतिम में ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि हम अपना कल 75वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, हमारे देश में कल संविधान लागू हुआ था, इस पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे और हमारे संविधान को लेकर आपके क्या विचार है?
इस समय सबसे ज्यादा खतरा अगर है तो भारत के संविधान को खतरा है कि जब हिंदू राष्ट्र बनाने पर हमारी सरकारें तुली हुई है तो जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र का इन्होंने संविधान भी बना लिया है और इस संविधान को वो खत्म करने पर तुले हुए हैं। तो ये संविधान तो खत्म नहीं होगा, संविधान को खत्म करने वाली सरकारें जरूर खत्म हो जाएंगी। गणतंत्र दिवस की देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा देश गणतंत्र दिवस के उल्लास में डूबा रहे, पर सबको ये बात सोचनी पड़ेगी कि संविधान रहेगा तभी हमारे मौलिक अधिकार होंगे, तभी पिछड़े वर्ग के लोगों को सुरक्षा मिलेगी, तभी बेटियों को सुरक्षा मिलेगी, तभी बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगी। हमारा संविधान जिंदाबाद, गणतंत्र दिवस जिंदाबाद।
जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका आभार कि आपने अमूल्य समय निकाला, अपने विचारों को रखा और किस तरह से आपने सरकारों को ये निर्देश जिस तरह से मांगे की है, हमें उम्मीद है कि जिस तरह जब भी हमारे देश में उंगलियां उठी है हमारे, तब तक हमारे देश में नई क्रांति आई है, नई विचारधारा आई है और हमें उम्मीद है कि जब हम 75वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे तब भी एक नई क्रांति आएगी और हमारे देश की बच्चियां खुद आके होकर अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगी और एक बार फिर देश में महिला क्रांति जागेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।
कोई बात नहीं।